राजवंशी हवेली के उस शाम के रंग कुछ अलग ही थे। पूरे ड्राइंग रूम में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बड़े झूमरों की चमक और फूलों की महक मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो किसी शाही स्वागत से कम नहीं लग रहा था। पारंपरिक चाय पार्टी का इंतजाम किया गया था। लंबी टेबल पर सजी क्रिस्टल की प्यालियां, चांदी की प्लेटों में रखी स्नैक्स, सभी कुछ परफेक्ट और राजवंशी शान के अनुरूप। अखिल की माँ नीली सिल्क की साड़ी में सबको आत्मीयता से बैठने का आग्रह कर रही थी। अनन्या बार बार नौकरों को संकेत कर रही थी कि किसी भी मेहमान को थोड़ी भी असुविधा ना हो, लेकिन पूरे कमरे का सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ी खामोशी बस अखिल के भीतर पल रही थी। पहली चुस्की, पहला वार। माथुर साहब ने अपनी चाय का प्याला उठाया और बोले, अखिल बेटा, कहना पड़ेगा, इतनी बारीकियों पर ध्यान दिया है तुमने, सचमुच राजवंशी खानदान की शान झलक रही है। अखिल ने हल्की मुस्कान दी, सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। और तभी रैना हंसते हुए कुछ कह रही थी। उसकी आवाज़ अखिल के कानों में किसी पुराने गीत की तरह गूंज उठी। उसके सामने बैठी रैना ने चाय का प्याला उठाया, हल्के से उसकी भाप चेहरे से टकराई और उसकी आंखें एक पल के लिए ऊपर उठीं। उन आंखों का मिलना मानो पुराने घाव पर नमक डाल देना था। विक्रम की सहजता और अखिल की बेचैनी। विक्रम बड़े ही सहज ढंग से मेहमानों से घुल मिल रहा था। वो कभी माथुर साहब से किसी नए प्रोजेक्ट की चर्चा करता तो कभी अनन्या से कहता, आपकी मेहमान नवाजी तो लाजवाब है, सच कहूँ तो घर जैसा एहसास हो रहा है। अचानक ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर अखिल के कंधे पर रखा और बोला, देखो ना अखिल, तुम्हारे बिना ये पार्टी अधूरी थी। रैना को भी यही कह रहा था कि राजवंशी परिवार से मिलना एक सौभाग्य है। वो स्पर्श अखिल को अंदर तक झकझोड़ गया। उसकी नसें तन गईं, जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो। उसने जबरन हल्की मुस्कान बनाई, मगर उसके भीतर एक तूफान फट पड़ा था। ये हाथ मेरे कंधे पर क्यों, क्या जताना चाहता है? और ये रैना क्यों मुस्कुरा रही है? सच में ये औरत तो किसी की भी बाहों में खुद को डाल सकती है। जिसका हाथ थामे घूमे उसी की वफा निभाने लगती है। कैसी है ये चरित्र, या कहूं कि चरित्रहीन। उसके दिल में गालियों की आग जल उठी। चेहरे पर गुस्से की परछाई आकर भी उसने तुरंत अपने भाव छुपा लिए। रैना की चुप्पी। रैना ने चुपचाप सब देखा। उसे महसूस हो रहा था कि अखिल की निगाहें हर पल उस पर टिकी हैं। उसकी हर हरकत, हर सांस जैसे अखिल के दिल में चुभ रही हो। उसने एक बार मुस्कान ओढ़ी और सामने रखी प्लेट से एक सैंडविच उठाया, पर उसकी आंखों में कहीं एक खामोशी, एक झिझक थी। जब जब विक्रम अखिल के साथ सहज बातचीत करता, रैना महसूस करती कि अखिल का गुस्सा उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। वो जानती थी ये निगाहें सिर्फ सवाल नहीं कर रहीं, ये इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। भीतर का तूफान। बातचीत चलती रही। कंपनियों के प्रोजेक्ट्स, नए सौदे, साझेदारी की उम्मीदें, सब कुछ औपचारिक और परिपूर्ण लग रहा था। लेकिन अखिल के कानों में वो आवाज़ नहीं गूंज रही थी, उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं उतर रही थी। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था, तू भी कितनी आसानी से विक्रम का हाथ थामे खड़ी है रैना, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। कभी तू मेरे नाम से सांसें गिना करती थी और आज तू उसकी बन बैठी। तेरे चेहरे पर मासूमियत है, पर तेरी रगों में बेवफाई। खुदा की कसम, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी मुठ्ठियाँ अनजाने में भींच गईं। कप का हैंडल लगभग टूटने को था। औपचारिक समापन। चाय पार्टी जैसे ही समाप्त हुई, माथुर साहब ने संतोष से कहा, अखिल, तुम्हारी माँ और बहन ने जो अतिथि किया है वह अविस्मरणीय है। हमें सचमुच परिवार का हिस्सा महसूस हो रहा है। विक्रम ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो लग रहा है कि ये घर हमारा दूसरा घर है। फिर उसने रैना की ओर देखा और बोला, ना रैना। रैना ने सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन अखिल के लिए ये मुस्कान किसी खंजर से कम न थी। अकेले का गुस्सा। रात का अंधेरा गहराने लगा। मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अखिल अपने स्टडी में जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर चांदनी हल्की थी, पर उसके भीतर का अंधेरा गहरा रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही दृश्य घूम रहा था, विक्रम का हाथ उसके कंधे पर, रैना का सहज बैठना और उसकी हंसी। उसने धीमे से बुदबुदाया, तूने सोचा होगा कि मैं तुझे देखकर कुछ महसूस नहीं करूंगा। नहीं रैना, तू गलत थी। आज भी तेरी हर अदा मुझे अंदर तक तोड़ देती है। पर सुन ले, तुम मेरे लिए मर चुकी है। तुम सिर्फ एक औरत है जो जिसे भी देखे उसी पर लपक पड़े। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिल में जलन, आंखों में नफरत और दिमाग में सिर्फ एक कसम, अब ये खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगा। विक्रम और तुम दोनों को इस धोखे की कीमत चुकानी होगी। उस रात हवेली सोई जरूर, पर अखिल की आंखें नहीं, उसका दिल अब अनकहे बोझ से नहीं बल्कि बदले की आग से जल रहा था।